نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. سورة توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, یعنی یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا, اور یہ انداز قرآن پاک کا اور بھی جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں آپ کو بیچ میں ایک ذریعہ بنایا گیا. بہت معروف اس کی مثال آخری صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, اور اسی طرح سے قل کے ساتھ کہنا. ویسے تو پورے قرآن میں ہر حکم ہمارے لیے اہم ہے, بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ دیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوائیں, عمل کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے اس کا ایک ہی درجہ. لیکن جس کو ہم اپنی چھوٹی سی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں نا, تو وہ کیا ہے کہ جب کسی بڑے کو یا کسی پیارے کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں نا, تو دوسرے کو انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے خاندانوں میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کسی کا رشتہ لینا ہو اور ڈر یہ ہے کہ دوسرا بندہ شاید انکار کر دے, تو گھر کے کسی بڑے, خاندان کے کسی بڑے کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ آپ مانگیے, اماں سے کہلوایا ہے, ابا سے کہلوایا ہے. کیوں؟ کہ یہ نہ نہیں کر سکیں گے. بس انسان کی عقل جس بات کو سمجھتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ویسے ہی بات کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ جو حکم آ رہا ہے, ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کے وہ احکامات جو حقیقت میں عام احکامات سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو قل کہہ کے کہلواتا ہے. ہماری یہ آیت بھی لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے. ہمارے لیے بس اس میں کرنے کا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو سنتے وقت اس چیز پہ اور زیادہ فوکس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کوئی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ کتنی اہم ہوگی. کیا کہہ دیجئے؟ ان کانا, اگر ہیں, ان میں نے اف, یعنی انگلش میں اگر آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے ایک بات کہتے ہیں, اور وہ کیا کہ ان کانا, اگر ہیں, آباؤکم, تمہارے باپ, آباؤکم میں باپ کہہ کے پورے کا پورا اوپر کا نصب, باپ, دادا, نانا, جو بھی بزرگ ہیں آپ اس کو آباؤکم کو بزرگ کہہ لیں, کہ اگر تمہارے بزرگ, وابناؤکم, اور تمہارے بیٹے, بیٹے کے اندر پوتے, نواسے اور باقی سب بھی آ جاتے ہیں, یعنی نیچے سے جو انسان کی لڑی چلتی ہے, آپ اس کو اپنی آف سپرنگس کے معنوں میں کہہ لیجئے, نسل, ذریت, کوئی بھی جس کے ساتھ انسان کوئی بھی محبت محسوس کرتا ہے, کہا کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے, و اخوانکم, اخوانکم بھائی, اب بھائیوں میں سگے بھائی, سوتیلے بھائی, رشتے کے بھائی, کوئی بھی, مراد ایسے ہے کہ جیسے جن کے لیے تمہارے دلوں میں محبت آتی ہے, اگر تمہارے وہ بھائی, اخوانکم, اور آپ دیکھیے جمع ہے, ایک نہیں ایک سے زیادہ بھائی, پھر اس کے بعد دیکھیے, وازواجکم, اور تمہارے جوڑے, جوڑے سے مراد اگر بیوی ہے تو شوہر, زوج کا لفظ عربی زبان میں سپوس کے معنوں میں آتا ہے, بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی. ازواجکم و اشیرتکم, اگلی چیز دیکھیے, اشیرہ قبیلے کو کہتے ہیں, کنبا, اشر عربی میں کہتے ہیں دس, تو اشیرہ عربی میں دس سے زیادہ لوگوں کا گروہ, جس کو آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ آتا ہے نا فیملی, ایک خاندان کا لفظ ہے, ایک کچھ کوئی کچھ, اسی طرح سے مختلف چیزیں عربی زبان میں آتی ہیں. ادھر اس سے مراد لیجئے کہ تمہاری کلوز فیملی کے لوگ, یعنی جیسے آپ کہہ لیں کزنس, جن کو ہم اپنے عام موقعوں پہ بلا لیتے ہیں, وہ کون سے ہوتے ہیں؟ जिसके अंदर हम हकीकत में बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। अगर आप देखें तो वीकेंड्स हमारे अमूमन हमारे अशीरों के साथ गुजरते हैं। अशीर अशरा से कोई पार्टी करे, आप कहते हैं अपने घर के 10-15 लोग हो जाएंगे। सुनते हैं ना, ये बस अपने घर के लोगों के लिए ये काफी है। तो गोया के यहाँ अल्लाह सुबहाना तला क्लोज सर्कट के लोगों की बात करते हैं कि देखो अगर तुम्हारे अशीर तुम्हारे खानदान और वह अमवालुनिक तरफ तुमूहा तुम्हारे वो माल जिनको तुम कमाते हो, मुराद है मर्दों के लिए बिजनेस कारोबार एक तरफा काफराफा से होता है, यानी जिनमें तुम्हारा दिल पड़ा रहता है। सीधी सी बात है, सुबह शाम बैठे हो नमाजों में भी जिसके हिसाब जोड़ते रहते हो। मैं इसको ऐसे कहती हूँ जैसे 99 का चक्कर। अमूमन मर्दों का हाल यही होता है, इल्ला माशाल्लाह कमाना फर्ज भी है सुन्नत भी है और कमाने का अजर भी है। रिस्के हलाल कमाने वाला क्यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा में होंगे। लेकिन यहाँ एक किस्म का वो फोबिया बयान किया गया है कि माल कमाने में नमाज चली गई। हैया अलैस सलाह हैया अलल फलाह की आवाज आई, नतीजा क्या हुआ? लब्बैक कहा कि नहीं कहा? कहक आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह ताला कहता है कि जिन मालों को तुम कमाते रहते हो वह तिजारतुन, और वो तिजारत लेन देन ट्रेडिंग के मालों में, यानी वो चीजें जिनको तुम हर वक्त अपने बिजनेस के बीच में रखते हो। तख्शौन कसादहा, तुम डरते हो जिनके मंदा होने से। कसादहा उर्दू में सुना कसादबाजी, कहते हैं कि सामान फरोख्त मौजूद हो लेकिन गाहक ना हो। उर्दू में लफ्ज सुना आज मंदा, जिनके हस्बैंड बिजनेस करते हैं तो सिस्टर्स इस लफ्ज से बहुत ज्यादा आगाह होंगी। जब घर आते हैं तो पूछते हैं कैसा रहा, कहते नहीं आज मंदा रहा यानी स्लो था। मकसद क्या है कि वो तिजारतें जिनके डाउन होने का या बिजनेस के कम होने का हर वक्त तुम्हें धड़का ही लगा रहता है, और वह मसा की नुतर दऊ नहा, और वो घर जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। ऐसे लग रहा है कि अम्वाल उन एक तरफ तुमूहा और तिजारत उन तक शव न कसादहा, ये दो चीजें मर्दों के वीक पॉइंट है। और अब मसाकिन उतर दऊ नहा, वो घर जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, ये औरतों की बातें है ना, हमारे दिल पड़े होते हैं ना घरों में हर वक्त। बाज औरतों को मैंने देखा सारा दिन घर का काम करती हैं और फिर कहती हैं इस घर ने तो मेरी जान ले ली। करती भी रहती हैं, रो भी डालती रहती हैं, सान भी जतलाती हैं, और इतनी सफाई की बाद में मूड इतना ऑफ हुआ कि मियाँ को भी गुस्सा आ गया। फिर कहती है मैंने सुबह से इतना काम किया आप तो खुश ही नहीं होते। भाई घर तो साफ है, आप दिल तो साफ करें। आपकी जुबान पे अंगारे हैं, गुस्सा है, माथे पे तेवरी है, सर पे आपने दुपट्टा बांधा हुआ, हाय थक गई, उठते बैठते अब शिकवे कर रही हूँ, उनको आपके घर से क्या खुशी होगी। लेकिन हकीकत है कि हम अपने प्यारे मासूम बच्चों के पास दफा पीछे लग जाते हैं जब हम घर बहुत सजाते हैं। हमारे दिलों में हमारा घर बसता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा जो वीक पॉइंट है ना घर, अल्लाह की नेमत है। लेकिन बाज दफा तुम इन घरों को इतना पूजने लग जाते हो, वल्लाही घर रहने के लिए है, घर को साफ करना है, घर कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन जब घर बुत बन जाए, जाने ही ना छोड़े, और घर के अंदर घरदारी की हर चीज ले ले जो होती है, कभी सजा रहे हैं, कभी खाना पका रहे हैं, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो घर जिनको तुम पसंद करते हो। अब आप देखिए आबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अजवाजुकुम अशीरतुकुम अम्वालुन एक तरफ तुमूहा तिजारतुन तक शौन कसादहा और मसाकिन तरदौनहा। कितनी चीजें हो गई? 8 चीजें हो गई। 1 से लेके 8 तक की गिनती आप गिने तो अल्लाह सुबहान तला ने हमारे 8 वीक पॉइंट बयान करने के बाद अब कहा क्या है, इस पे गौर करना है हम सब ने। क्या अहब इलैकुम, तुमको ज्यादा प्यारे हैं, डियरर टू यू, यानी कंपेयर करो तो इन 8 चीजों की मोहब्बत, या कभी किसी एक की मोहब्बत, कभी दूसरे की मोहब्बत, कभी किसी तीसरे की मोहब्बत। अहब्बा हुब का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना मोहब्बत, लव। अहब सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ही प्यारे। जैसे आप कहते हैं ना मुझे इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है, और इस बच्चे से तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। घर में ऐसी चूचा चलती रहती है ना। तो अहब क्या है कि जिसकी मोहब्बत के आगे सबकी मोहब्बतें दब जाएं। अहब इलैकुम किससे? अहब जहां भी आएगा ना वहां कंपैरिजन जरूर होगा। यानी आप कहेंगे ना एक है ना कि आई लव यू, आप किसी से बस प्यार करते हैं, लेकिन जब आप किसी से कहेंगे ना कि इससे मैं उनकी निस्बत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो यकीनन कोई ना कोई देन आई लव यू देन हिम, आई लव यू मोर देन हिम, राइट। तो ये देन का लफ्ज है। अल्लाह ताला कहते हैं अहब इलैकुम, तुम्हें ज्यादा प्यारे हैं किससे, मिन अल्लाही व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से। अल्लाह से प्यारे क्या मतलब, अब इसको समझिएगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अल्लाह से तुमको प्यारे हैं मतलब ये है कि एक तरफ अल्लाह का कोई मुतालबा है और दूसरी तरफ तुम्हारे आबाओकुम से लेकर मसाकिन की 8 किल्लत में से किसी एक का तकाजा है। मसलन अल्लाह सुबहाना तला कहता है हैया अलैहिस्सलाम, आओ नमाज की तरफ, हैया अलैहिस्सलाम, आओ नमाज की तरफ, भलाई की तरफ, लेकिन इन 8 में से कोई एक चीज तुम्हारे पांव पकड़ रही है। घर सजाते रहते हो, साफ करते रहते हो, चमकाते रहते हो, दिस एंड दैट, या तुम अपनी फैमिली को खुश करते रहते हो, नमाज छोड़ देते हो, तो तुमने किस बात का सबूत दिया कि मेरा घर या मेरी फैमिली या मेरे बच्चे या मेरा शौहर अहब इलई, मुझे ज्यादा प्यारा है, मिन अल्लाह ही, अल्लाह के हुक्म से। आम हालात में हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि हम अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर मैं ये बात शुरू करने से पहले आप साथियों से पूछती ना, डू यू लव अल्लाह सुब्हान तआला, तो आपने शायद आंखों में आंसू भर के कहना था बहुत ज्यादा। अगर आपसे कोई पूछे आपको क्या, तो आप कहें आई लव अल्लाह सुब्हान तआला, नहीं पता चलता। और ये अगर अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं ना, तो ये हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें, ये तो अल्लाह ने हमारी फितरत में गूंदा है। जब हमारा खमीर गूंद रहा था ना, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बात गूंद के डाल दी कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा, याद रखिए। और उसमें एक चीज क्या है कि इंसान अपनी तबीयत के एतबार से कमजोर है, खुलिकल इंसानु दईफा, वीक है। तो जो चीज कमजोर होती है ना, वो किसी मजबूत चीज का सहारा चाहती है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, दरख्त मजबूत होता है ना, उसकी जड़ें नीचे भी उतनी होती हैं जितना उसका ऊपर फैलाव है। आप किसी जगह एक छोटा सा बीज ला के दरख्त का डाला, 4-6 साल में वो एक मजबूत दरख्त बना हुआ है, स्ट्रांग है। इसके बरक्स आप कहीं से किसी की क्यारी से या किसी नर्सरी से अगर आप अंगूर की एक नाजुक सी बेल ले आए और उसको लगा दिया आपने मट्टी में, जब वो बेल उगती है तो क्या होता है, कमजोर है ना। अब उस बेल को ऊपर जाने के लिए सहारा चाहिए, चाहे वो आप किसी दरख्त के इर्द गिर्द उसको ऐसे घुमा दें तार के साथ, दीवार के साथ लगा दें, लेकिन उस बेल को खड़े होने के लिए सहारा चाहिए। ऐसे ही है ना, आंधियां चलती हैं तो अमूमन बेलें जो हैं वो गिर जाती हैं, दरख्त खड़े रहते हैं बाज़ूकात। तो जिस तरह एक बेल ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की मुंतजर होती है ना, इस तरह इंसान ऊपर जाने के लिए एक मजबूत सहारा चाहता है। अब ये सहारा मिल सकता है सिर्फ एक जात से, क्योंकि वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, और वो इंसान की मदद भी कर सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जब ये सब कुछ हुआ, इसके पीछे एक ही हस्ती बचती है और वो है अल्लाह की जात। सूरत बकरा में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं, आयत 165 है। जब ईमान होगा ना, तो इंसान इस सहारे के लिए अल्लाह को ढूंढेगा। ईमान नहीं होता तो क्या होता है, फिर इंसान झूठे सहारे ढूंढता है, किसी ने बुत को पूजा, किसी ने दरख्त को पूजा, किसी ने मन को पूजा, किसी को पूजा। आपने वो एक नज़म सुनी होगी, बहुत मारूफ हुई थी, मैंने अपने एक लेक्चर इस्लाम फितरत की पुकार में सुनवाई भी थी, कि एक हिंदू औरत है, शायरा है, इस्लाम से मुतासिर है, और वो किस तरीके से इस्लाम की बातें करती है। एक बज़ाहिर खुद को हिंदू कहने वाली औरत की जब बातें सुनते हैं, तो आपको लगता है कि कुरान और हदीस में और उसकी बात में फर्क नहीं, इतना ज्यादा उसको उस कुरान की सच्चाई समझ आई जो बहुत सारे मुसलमानों को अभी तक नहीं पता। खुलासा क्या है कि लोग दूसरों को खुदा बनाने लग जाते हैं। अब जब अल्लाह को निकाला तो उसकी जगह कोई दूसरा आ गया। हम मुसलमान क्या करते हैं, कहते यही हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। लेकिन जब इन 8 में से किसी एक मोहब्बत के तकाबुल कंपैरिजन में अल्लाह व रसूल ही और उसके रसूल की मोहब्बत आती है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। हम सब, मैं खुद अपने आप को सबसे पहले आप सबके साथ शामिल करूंगी, ہم اپنا جائزہ لیں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آتا ہے, اللہ کے حکم تو آگے نا, نماز, روزہ, حج, زکات, عام جنرل دن میں 5 بار آگے. رسول کا حکم کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے, پورا دین آ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر. تیسری چیز, وہ جہاد فی سبیل ہی, اس کے راستے میں جہاد سے. لفظ جہاد آتے ہی ہم لوگ اگریسو ہونے لگتے ہیں بعض اوقات, تلوار نہیں, جہاد جہد سے, اور جہد کہتے ہیں محنت کرنے کو. جہاد کا سب سے پہلا درجہ پتا کیا ہے؟ جہاد بالنفس, اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ مائل کرنا. فجر کی نماز, گرم بستر چھوڑنا جہاد ہے. آج کل فجر کی نماز 2-2.5 گھنٹے کی بھی نیند پوری ہوئی نہیں تو نماز کا وقت آ گیا, یہ جہاد ہے. حرام سامنے ہے, رکنا ہے, جہاد ہے. غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا, جہاد ہے. جہاد کا آغاز جہاد بالنفس سے ہوتا ہے. اور آپ پتہ ہے کہ عملی طور پر اس کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے؟ جب کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے. یاد رکھیے, جب کوئی بندہ شعور کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتا ہے نا, قرآن سے مراد شریعت ہے پوری, اسلام, حدیث, کوئی بھی بات, تو اس وقت معاشرے میں ایک ریئیکشن اٹھتا ہے. آپ بیٹھیں, فرض فرا دے کے لوگوں کو روز بلائیں اور 2 قرآن پاک ختم کروائیں, پھر ختم پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ مٹھائی بانٹیں, دعا کرائیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ربیع الاول کا مہینہ آ جائے, آپ کہتے ہیں میرا تو پورا مہینہ بک ہے, آج ادھر میلاد ہے, آج ادھر ہے, آج ادھر, کوئی کچھ نہیں کہے گا. مردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے بھائی یہ جا رہی ہیں, ان کو جانا پڑے گا, گھر والے بھی صبر کر لیتے ہیں. عموماً مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کا ایک کورس جوائن کیا ہے اور اب میں قرآن سیکھنے جا رہی ہوں. کب, کتنے دن؟ روز جاؤ گی؟ 3 دن, 2 دن, 5 دن؟ اچھا روز. اس وقت یہ چوں چان چین جو شروع ہو جاتی ہے نا, یہ پہلا درجہ ہے. انسان کو جتنی اسٹرگل دین سیکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہے نا, یاد رکھیے گا, آپ میں سے جو اس چیز سے لگے ہوئے ان کو اپنے ابتدائی دن یاد ہوں گے, ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کسی کی ہیرے کی انگوٹھی چوری کر لی. مردوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیویاں سارا دن کدھر ہیں, کوئی سارا دن گھر فون نہیں کرتے, کوئی آتے نہیں جاتے نہیں, ان کو پرواہ یہ ہے کہ شام کو ہم آئیں تو کھانا تیار ہو, گھر صاف ہو, در سے. آپ ادھر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے تو سارے تقاضے شروع, ادھر گئی تھی, کیوں گئی تھی, اور اللہ رحم کرے روز وہ آتے ہیں تو خیر سے گھر گندا ہی ہوتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں پتہ ہے یہ بیوی ہے, بچوں والی, یہ وہ. آپ پڑھیں قرآن, جائیں کسی کلاس میں, کل سے آپ آئیں دورہ قرآن, اور شام کو میاں کے آنے پہ کھانا نہ پکاؤ, گھر ذرا سا گندا ہو, عادت نہیں صحیح, تو کہہ کے دیکھا اور جاؤ قرآن سیکھنے. ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ آپ کا دشمن ہو گیا. واللہ ہی شروع میں تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا اللہ کے بندوں, پھر آپ کی دوست ہیں, ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ کی قیمتی دولت چھین رہا ہے. بولا آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں. نہیں, مسئلہ یہ کہ پہلے آپ کہتے تھے آئی ایم اویلیبل. ایک جملہ میں نے اکثر عورتوں کے منہ سے سنا ہے فون پہ بات کرتے ہوئے, کوئی کہتا ہے اچھا السلام علیکم, کوئی کام ہے, کچھ مجھے بتانا ہے, میں کہوں اینی ٹائم. ہم نے اپنی دوستوں اور رشتہ داروں اور ساتھیوں کو کیا عادت ڈالی ہوتی ہے؟ جب چاہو آؤ, جدھر مرضی کو چلو, 2 گھنٹے تمہارے لیے ہم جائیں گے, کسی مال میں چلیں گے, نو پرابلم, مہندی کسے جانی ہے, پلیٹیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, بچے کی سالگرہ کر رہے ہو, ہم کیک کی موم بتیاں لینے کو تیار ہیں, ہم ہر وقت ان کو اویلیبل ہوتے ہیں, چاہے ہر وقت کوئی ہمیں نہ بھی بلائے. اب جب آپ قرآن سے جڑے کلاس میں گئے تو آپ نے ان کو کہنا کہ دیکھیں پلیز آئی ایم بزی, 11 to 2 میں کہیں جا نہیں سکتی اس پورا مہینہ. بس وہیں سے ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ہاتھوں سے چیز جا رہی. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اب اویلیبل نہیں رہے آلویز. دوسرا ایک اور نقصان ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ گلٹ. جہاں 3 گھنٹے آپ بیٹھیں گے, کوئی 3 نہیں تو چلو ایک بات تو اچھی آپ سن کے ہی آئیں گے نا, اور کوئی ایک بات ایسی آپ کے کانوں میں پڑی جائے گی جو آپ میں یا آپ کی دوستوں میں خراب ہوگی, اور آپ کو 1,00,000 بھی سمجھا کے بھیجیں نا کہ یہ باتیں باہر جا کے نہ بھی کرنا, یہ تبلیغ نہ کرنا دوسروں کے ساتھ. ایک جنرل ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو, ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جو بات آپ کو اس کلاس روم میں بیٹھ کے سمجھ آئی ہے نا, یہاں سے جملہ اٹھا کے گھر جا کے میاں کے سر پہ ماریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا. پڑھ کے تو آپ جا رہے ہیں, قرآن کی آیتیں تو آپ کے دل پہ اتر رہی ہیں, اس کی تسکین اور اس کی ٹھنڈک تو آپ محسوس کر رہے ہیں, تو بدل آپ کے شوہر جائے, بدل آپ کا جوان بیٹا جائے, یہ نہیں ہوگا. حکمت سے بات کرو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. तो पता क्या चला कि जब हम अल्लाह की तरफ आते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द वाले अनसिक्योर फील करते हैं। फिर एक तीसरा भी मसला दोस्तों में और साथियों में होता है कि आप उनको आपकी मौजूदगी में कुछ काम करते हुए शर्म आएगी, आपको खुद भी आएगी, उनको भी आएगी। वो कहते हैं ना, एक हमाम में सब एक जैसे। अब वो नहीं रहा मसला, तो फिर वो अपनी खिफत मिटाने के लिए आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं। तो ये बन गया जिहाद इन फी सबीली। लेकिन जो बंदा इन शुरू के जज्बाती लम्हों में ठहर गया, बाद में आसानी ही आसानी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब हम अल्लाह के दीन की तरफ शऊर से आते हैं ना, तो हमारी पॉपुलैरिटी गिर गई, और सच गिरती होगी। आपको हर महफिल की शम्मा जो बनाया हुआ था उन्होंने, आपके जाने पे तो महफिल सजती थी और ज्यादा जोबन पे आती थी। अब आप उनके काम के नहीं रहे, तो फिर अब तो वो खुश नहीं होंगे। एक एक करके फिर जरा जरा आपके दोस्त आपके साथी पीछे होने लगते हैं। कुछ लोग इस पे ही आंसू बहा के वापस चले जाते, नहीं ये मुझसे नहीं देखा जाता, कल तक तो मेरे बगैर कोई दावत नहीं होती थी, अब तो मुझे पता चला कि इस वीकेंड पे फलां जगह दावत थी और मुझे बुलाया ही नहीं। अब इस जज्बाती धचके के ऊपर कुछ लोग पलट जाते हैं। मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ क्लासेस में, तो सभी सुनते हैं जो भी है, लेकिन आप माशाल्लाह हमारे गेस्ट हैं, हो सकता है आप बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो मेरी बात। मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि देखें, आप अगर अल्लाह की तरफ चल पड़े हैं ना, आपको जन्नत दिख गई है ना, जब जन्नत जो दिख गई आप चलते रहिए। आज अगर कोई आपका साथ छोड़ भी रहे ना, इंशाल्लाह आप देखिएगा 1 साल 2 साल 3, हर एक का दिल जितना पहले सख्त था ना, अब उतना नरम होगा। कोई डाले जल्दी गलती, कोई देर से। तो 3 साल 5 साल के अंदर इंशाल्लाह आपके खानदान के लोग, आपकी फैमिली के दोस्तों में से एक खूबसूरत ग्रुप आपके साथ जन्नत के रास्ते का राही बन चुका होगा। शर्त एक ही है, आपने नहीं पलटना। एक छोटी सी मिसाल याद आ गई। कभी आपको अपने मियाँ के साथ शॉपिंग पे जाने का इत्तेफाक हुआ, और मियाँ भी वो जिसको शॉपिंग से कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और अक्सर मर्दों को नहीं होता, उनके तो दिल पे ही हाथ पड़ रहा होता है कि अब ये इतने भारी भारी सौदे कर रही है, पैसे तो मैं नहीं देने हैं। और बाद जब मेरे तस्वर में आता है कि बेगम साहिबा आगे आ गए पर्स लेके, और मियाँ साहब पीछे बच्चा उठा के फिर रहे हैं, थोड़ी देर बाद बेगम जल्दी कर लो बस अभी अभी, वो आप उनको लारे लगाती लगाती अपने पीछे पीछे लेके जा रही होती है, पूरा रबी सेंटर फिर रहे होते हैं, और वो मजलूम बंदा एक गुना की सजा भुगत रहा है, एक कबूल खैर की वजह से कितने और मामले कबूल करने पड़े। थोड़ा सा वो जब थकते हैं ना, तो धमकी देते हैं, बस मैं बाहर निकल जा रहा हूँ, बस खत्म, मैं घर जा रहा हूँ। वो खड़े हो जाते हैं, इतने में आपकी नजर सामने ऊपर एक वाले फ्लोर पे पड़ती है, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, आप उसको दे के चल पड़ी। याद ही नहीं रहा कि मियाँ तो कह रहे थे घर जा रहा हूँ, चलो वो खड़े हैं वहीं। आप ऊपर गई, खो गई खो गई, देखा देखा एक कपड़ा दूसरा देखा, एकदम याद आता, अरे मियाँ तो नीचे थे। जो ही आप पलटते हैं ना, तो वो गरीब अल्लाह का बंदा फिर ऊपर आ चुका होता है। आते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप जो नहीं टली तो वो क्यों टले। बस वो तो एक सूट था ना, एक जोड़े की कशिश आपको ले गई, और आखिर मियाँ भी पीछे चलता ही गया। जिसको जन्नत दिखेगी, जिसको जन्नत के वो खूबसूरत कपड़े दिखेंगे, जिसको जन्नत के वो खूबसूरत घर देखेंगे, कि जिसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और जिसकी मट्टी जाफरान की है संग्रेज़े लूलू के, वो बंदा पलट सकता है? कैसे पलटता है? अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। सॉरी आई कैंट, मैं अकलमंद हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप चलते जाए, आज आप खुद दीन पे जम रहे हैं ना, फौरी ये काम ये कर दें कि अपने सुनने के बहाने घर वालों को वही सुनाना शुरू कर दें, बगैर कॉन्शियस किए, बगैर ये कि सुने ये आपके लिए, ये देखें ये सारी आपकी बातें हो रही हैं। बस लोग इस तरह जालिमाना किस्म की तबलीग करते हैं घर वालों को, वो जिन्होंने सुनना भी होता है ना, तो वो कान बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, तुम मुझे सुना रही हो? नहीं, खामोश। वो जिसको कहते हैं ना कि कहो बेटी को और सुनाओ बहू को, अब खानदानी जिंदगी में तो ये बात पता नहीं किस दर्जे की है, लेकिन दीन के मामले में ये बात बड़ी खूबसूरत है। ऑलवेज साइड वे तबलीग करें, जिसमें आपको कोई खराबी दिखे ना, उससे नजर चुरा के वो बात करें। आप कहें तो सुनानी तो उसको थी, तो सुन वो जाएगा, उसको खुद ही पता लग जाएगा। सूरत क़यामत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, बलिल इंसान वला नफ्सी ही बसीरा वलौ अल्क़ा मअज़ीरा, बल्कि इंसान खुद को खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने कितने उजर बांधे। आप मुझे पता नहीं सोका कितना नेक समझ रहे हैं, पर जो मैं हूं मेरे से ज्यादा आप नहीं जानते। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम किसी को बहुत बुरा समझ रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी मजबूरी नहीं बताती। उस बंदे को खुद बताता मैं क्या हूँ। ये बात मैंने कही तो मुझे एक वाक्य याद आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी, और आज भी यही हुक्म है कि जब बहुत ही ज्यादा खुशसाली हो तो सब लोग निकलें, खुले मैदान में जाएं, आहोजारी करें, सलातुल इस्तिस्का पढ़ें, तो अल्लाह के हुक्म से बारिश होने की उम्मीद होती है। हजरत मूसा ने लोगों को जमा किया और खुले मैदान में ले गए कि आओ अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि बारिश हो। चले गए। जब वहां सब ने बैठ के इज्तमाई दुआ की कि बारिश हो, तो अल्लाह सुबहान तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से बताया कि मूसा ये दुआ कबूल नहीं हो सकती। क्यों? तो इसलिए कि जो ग्रुप साथ तुम्हारे गया ना, उसमें एक बंदा इतना ज्यादा गुनाहगार है कि उसकी वजह से किसी की भी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ने नाम नहीं बताया, क्योंकि सत्तारुल उयूब गफ्फारुज ज़ुनूब, गुनाहों को माफ करने वाला, ऐबों को ढांकने वाला। कहा कि बस बारिश नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी बात कर दी कि भाई हम में से कोई एक ऐसा है, अल्लाह उससे इतना नाराज है कि उसकी वजह से किसी की भी बात नहीं पूरी हो रही। अब वो तो बात कह के चल पड़े। उस बंदे को सूझ गई, क्योंकि जो गुनाह करके आया होता है ना, उसको चारों तरफ पुलिस दिख रही होती है। आप एक सिग्नल तोड़ के जरा अगली लाइट पे जाएं, स्टॉप साइन पे बगैर रुके, तो दिल धक रहा होता है कि पीछे पुलिस की गाड़ी ना हो। इंसान की ये फितरत है कि वो अब किसी गुनाह के बाद सुकून की नींद नहीं सो सकता। उस शख्स ने वहां बैठे बैठे अल्लाह ताला से बात की, तुफ है मेरे ऊपर कि मैं कितना बदनसीब हूं, एक मेरी वजह से दूसरों की भी दुआ कबूल नहीं हो रही। पता नहीं वो क्या दुख सुख कर रहा था। थोड़ी देर हुई तो बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा बारिश नहीं होगी, गुनाहगार बैठा हुआ है, अब बारिश हो रही है। कहा, मूसा तुझे नहीं पता, मेरे बंदे ने यहां बैठे बैठे तौबा कर ली। जब उसने तौबा की, मैंने उसका गुनाह माफ कर दिया। तो गुनाह माफ है तो उजर खत्म, तो उजर खत्म तो बारिश। ये है अल्लाह के साथ बंदे का रास्ता। डोंट बी जजमेंटल। कभी दूसरों के बारे में आप कोई फैसले ना दें कि ये जन्नती है कि जहन्नमी है, इल्ला ये को फासिक बन के खुद ब खुद अपने आप को अल्लाह से दूर कर ले। हम सब अपने आप को पूछें, इन 8 मोहब्बतों की डोरियों में पढ़कर कितनी दफा दिन में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों का इनकार करती हूँ। देखिए, अगर आप लफ्ज जिहाद को लेंगे ना, तो अगर आप इसको लिटरल जिहाद में भी लेंगे ना, तो सहाबा कराम की जिंदगी को देखें। कोई दुनिया का काम उनको जब अल्लाह के रास्ते से रोक लेता था ना, तो खुद को सजा देते थे। अपनी औलादें और अपने माल को वो पीछे करके अल्लाह और उसके दीन के तकाजों को निभाते थे। सीरत के वाकया सुनाने लग जाओ तो बीसी होंगे, किस तरीके से वो लोग अपनी जात को जब बड़ा समझ लेते थे, अपने आराम को बड़ा समझते थे, तो बाद में उनको गिल्ट होता था। तबूक का सफर आप सब ने कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा सुना होगा। जैश उसरा उसका नाम था। तंगी तुरशी थी, खड़ी फसलें थी, पूरे साल की फसल पकने का दिन था, और गर्मी जोबन पे, और निकलना भी सबको है, फर्ज आइन था। खा सब निकलेंगे, निकले सब लोग। कुछ ने अपने उजर बहाने किए, किसी की कोई जायज मजबूरी थी, किसी की नाजायज थी। लश्कर कूच कर गया, एक सहाबी नहीं गए। खेतों में काम करते थे, फसल की मोहब्बत थी, वही क्या लम वाल एक तरफ तो हुआ। लश्कर सुबह कूच कर गया, दोपहर हुई, बीवी खेत में आई, दरख्त के नीचे उसने पानी का छिड़काव किया। अब जरा देखिए उनकी लग्जरी भी क्या थी, साया और नीचे जमीन जरा ठंडी, और बीवी ने जो रोटी साग दाल पकाया होगा उसके उनके आगे रखा, क्या ये खाना खा ले। बस खाना क्या खाना था, बैठे और एक लुकमा तोड़ा, मुंह में नहीं गया। अभी ख्याल क्या आया, ये क्या, अल्लाह का नबी कहाँ इस वक्त थके खा रहा होगा, गर्मी भी है, भूख भी है, प्यास भी है, सवारियां भी कोई नहीं, एक खजूर मिलती थी पूरे दिन में, चूसते चूसते थे, चूसते थे, उसकी गुठली तक चूस जाते थे, जब तक वो खत्म ना होते उसको छोड़ते ना। और बाद में जब लोगों ने पूछा कि एक खजूर से क्या बनता होगा तुम्हारा, तो कहा ये हमें उस दिन पता चला जब वो एक खजूर भी ना रही। अखीर ऊंटों को भी जिबा करना पड़ा, 18 यानी 18 लोगों के हिस्से में एक ऊंट आया था, टर्न बाय टर्न उस पर सवार होते थे। 17 लोगों के इंतजार के बाद फिर पहले की बारी आती थी, लेकिन आखिरी दिनों में जब खाना बिल्कुल खत्म हो गया तो फिर एक एक करके वो ऊंट भी जिबा हुए और ऊंटों के पेट का जो ओझरी का पानी है वो तक पीना पड़ा, बबोल के कांटे खाने पड़े। हमने क्या समझा इस दीन को, हम तो ये नरम कोचिस पे बैठ के दीन सीख लें या दीन का कोई काम कर लें तो अल्लाह इसको ही बड़ी इज्जत दे देता है। वो तो पत्थरों पे चले, वो तो तकलीफों में गए, बस इस सहाबी के मुंह में लुकमा नहीं गया। कहने लगे उफ है तुझ पे, अल्लाह का नबी जो तुझसे कितना ज्यादा बाइज्जत और कितना ज्यादा अल्लाह का महबूब है, वो इस वक्त धूप में फिर रहे, वो कहाँ है, पता नहीं उन्होंने खाया नहीं खाया, और तू इस ऐश की जिंदगी में पड़ा हुआ है। वो ऐश थी उनकी। हमारा किसी का अगर कोई होटल बन जाए इधर गांव के नाम पे या विलेज के नाम पे तो वहां जाके तो हम ये दाल साग खा लें, अदरवाइज खाना पड़े तो रोएंगे, हाय रोज ही सब्जी दाल मिलती है। बस बीवी को कहा मेरा घोड़ा तैयार करो, लुकमा वहीं छोड़ा और कहा मैं अल्लाह के नबी के पीछे जा रहा हूँ, और अपने घोड़े को एड़ लगाई और जिस तरफ काफिला गया था उधर गए। अब कुछ घंटे पहले के चले हुए थे, इन्होंने घोड़े को तेज किया, दूर से अल्लाह के नबी सल्लम और सहाबा को गर्द उठती भी दिखी। आपने उसी सहाबी का नाम लिया कि अल्लाह करे कि ये वो हो, क्योंकि जब एक साथी नहीं आता तो दिल उसमें पड़ा होता है। आप देखिए कि जब हम नए नए दीन की तरफ आते हैं ना, कोई एक बहन भाई है वो कहते जी हम आज के बाद मेहंदियों में नहीं जाएंगे, एक है वो कहता है जी आज के बाद हम गैर शरई चीजों में नहीं जाएंगे। जो गए होते हैं ना उनको भी बार बार वही याद आ रहा होता है, और खास तौर पर अगर माँ जिंदा है तो वो कहेगी हाय मेरी वो बेटी नहीं आई, फिर वो बाकियों के भी ना रंग में भंग ही डलता है। अगर अल्लाह हमें अपने दीन की तरफ चलाने में पहल ले लेना तो मुबारक है आपके लिए, सब आ जाएंगे एक दिन आपके पीछे, क्योंकि मिलके जैसे नेकी का मजा आता है ना, गुना का भी मजा मिलके ही आता है, साथियों और दोस्तों के बगैर गुना का क्या मजा। तो लिहाजा उन्होंने अल्लाह के नबी को ज्वाइन किया और अपनी कमी पेशी को दूर कर दिया, चल पड़े। उनको नहीं रोकते थे ये तकाजे। इसी तरह हजरत हंजला, गजवे उहद का मौका, नई नई शादी हुई है, न्यूली वेड, बस तो कहते शादी की रात थी, इतने में आवाज आती है कि अल्लाह अपने रास्ते में बुला रहा है, और अपनी बीवी को छोड़ते और मैदान जंग में पहुंचे, इस बेदर्दी से लड़े कि शहीद हो गए। जब मैदान जंग से जख्मियों की लाशों को उठाया गया तो एक औरत पर्दे में लिपटी भी शर्माती भी आती है और कहती है कि बस मुझे एक पैगाम देना था कि जब हंजला आए थे तो ये जुनाबत से थे, मुझे ये डर हुआ कि शहीद को चूंकि गुसल देना लाजमी नहीं है तो कहीं ये नापाकी की हालत में ना दफनाए जाए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि गम ना करो, मैं देख रहा हूं के फरिश्ते हंजला को गुसल दे रहे हैं। और साहबा कहते हैं कि जब हमने हजरत हंजला की लाश उठाई तो उसमें से पानी के कतरे थे, हालांकि सहरा पानी कोई नहीं होता था हमारी तरह, उधर मटकों में या थोड़ा बहुत जमा किया था, कोई पानी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखाया गसीलुल मलाइका उनका लकब पड़ गया। कभी सोचिए एक जवान मर्द बीवी के पास से उठ के जब जिहाद के लिए आ सकता है तो क्या वो 5 वक्त की नमाज नहीं मस्जिद में पढ़ता होगा।